القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم عزیزان محترم کل موضوع کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ سے ہو چکی تربیت کے عنوان سے آپ اس کو تربیت اسلامی کا نام دے دیجئے اسلامی تربیت کا نام دے دیجئے اور دو تین منٹ لوں گا کل کی تقریر کا خلاصہ تاکہ تسلسل قائم ہو جائے کل کی مجلس سے ہمارا رابطہ برقرار ہو جائے خلاصہ کل کی گفتگو کا یہ تھا کہ ہم مسائل کی طرف نشاندہی کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مسائل پیش آتے رہیں مسائل کا حل کیا ہے اور اس کو کون حل کرے گا کیسے لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کو حل کرتے ہیں مسائل کو پیدا کرنے والے تو معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں مسائل پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مسئلے ایجاد کرنا سب سے آسان کام ہے اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی مسئلہ ایجاد کر سکتا ہے اتنا تجربہ تو آپ کو بھی ہے مسئلہ ایجاد کرنا لیکن اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے تربیت ضروری ہے نا کیسے تربیت یافتہ افراد ہوں جو بڑے بڑے مجمعوں کو بڑی بڑی قوموں کو یا اس کو کنٹرول کر سکیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن سے چلنا پڑتا ہے سینکڑوں ہزاروں افراد کی تربیت کرنی پڑتی ہے جب جا کے کوئی ایک اس قابل بنتا ہے کہ قوم کی رہبری کر سکے ویسے تو ماشاءاللہ آپ کو کمی نہیں ہے بہت سارے ہیں خدا کا شکر ہے اس معاملے میں آپ بڑے خود کفیل ہیں جتنے بھی رہبر آپ کے ہیں شاید کہیں بھی نہ ہو یعنی پاکستان کی سطح کی بات کر رہا ہوں صرف آپ کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا یہی حال ہے جو ہمارا حال ہے وہی پورے ملک کا حال ہے رہبر کے معاملے میں ہم لوگ خود کفیل ہیں لیکن ہم ان رہبروں کی بات کریں جو تاریخ کا رخ موڑتے ہیں جو طوفانوں کا رخ موڑتے ہیں جو سیلاب کے دھاروں کو پلٹ دیتے ہیں ہم ان رہبروں کی بات کریں کہ جو بالکل مخالف سمت میں چلتے ہیں اور بالکل ایک دم دھارا موڑ کے رکھ دیتے تاریخ رقم کر کے چلے جاتے ہیں تاریخ رقم کر کے چلے جاتے ہیں دیکھیے تاریخ میں دو قسم کے کردار زندہ رہتے ہیں باقی سب فنا ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اربوں خربوں بلکہ خربوں کو بھی کروڑوں سے ضرب دے دیجیے نہ معلوم اتنے افراد آ چکے اور جا چکے باقی کون رہا تاریخ میں باقی رہ جاتا ہے شداد باقی رہ جاتا ہے نمرود باقی رہ جاتا ہے فرعون یا باقی رہ جاتے ہیں موسیٰ باقی رہ جاتے ہیں ابراہیم باقی رہ جاتے ہیں جناب اسماعیل باقی رہ جاتی ہیں جناب ہاجرہ یعنی دو کریکٹر باقی رہتے ہیں ایک پازیٹیو ایک نگیٹو باقی سب ختم ہو جاتے ہیں کیا مطلب پازیٹیو اور نگیٹو کریکٹر کا مطلب کیا ہے یعنی وہ کریکٹر باقی رہتا ہے جو تاریخ پہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے چاہے منفی اثر چھوڑے چاہے مثبت اثر چھوڑے بس دو باقی رہتے ہیں باقی سب ختم ہو جاتے ہیں یعنی کروڑوں لوگ جو جی رہے ہیں چلے جائیں گے سرمایہ دار ہو کے چلے جائیں غریب ہو کے مر جائیں جاگیردار ہو کے مر جائیں افسر ہو کے مر جائیں وزیر ہو کے مر جائیں سفیر ہو کے مر جائیں مر گئے ختم ہو گئے قصہ ختم پچاس سو سال بعد کوئی نام بھی نہیں جانتا اب تاریخ میں کتنے نام آپ کو یاد ہیں لیکن جو نام یاد ہیں وہ ایسے نام ہیں کہ تاریخ پہ اپنا اثر چھوڑ کے گئے یا منفی اثر یا مثبت اثر منفی اثر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے نام عبرت بن جاتے ہیں گالی بن جاتے ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام فرعون اس لیے نہیں رکھتی کہ فرعون تاریخ کا وہ کردار ہے جو منفی اثرات چھوڑ کر گیا اثرات چھوڑ کر گیا نام باقی ہے نام تو زندہ ہے نا فرعون کا لیکن کس طرح سے زندہ ہے عبرت بن کے زندہ ہے سبق آموز بن کے یعنی ایک انسان کو ڈرانے کے لیے زندہ ہے کہ دیکھو یہ ایک کریکٹر تھا نمرود نام زندہ ہے نا نام تو باقی ہے تاریخ میں لیکن منفی اثر چھوڑ کے گیا ہے تاریخ میں تاریخ میں یہ دو کریکٹر باقی رہتے ہیں باقی سب ختم ہو جاتے ہیں وہ کریکٹر باقی رہتا ہے جو تاریخ پہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے چاہے منفی اثر چھوڑ کے جائے چاہے مثبت منفی اثر چھوڑ کے جائے گا تو نام گالی بن جائے گا نام برا بن جائے گا نام عبرت بن جائے گا واقعات عبرت بن جائیں گے اگر مثبت اثر چھوڑ کے جائے گا تاریخ پہ اثر چھوڑ کے جائے گا مثبت اثر تو نشان راہ بن جائے گا मंजिल का निशान बन जाएगा, निशाने मंजिल बन जाएगा। यानी ख्वाहिश करेगा इंसान कि मैं इस रास्ते पर चलूं कि तारीख में मेरा नाम जिंदा रहे और मस्बत जिंदा रहे, मनफी नहीं। जनाब मूसा, जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल, ये तो अंबिया है ना, अंबिया अइम्मा या अइम्मा का साथ देने वाले वो नाबिगे रोजगार अफराद, चाहे वो खजूर फरोश हो, चाहे वो तम्र फरोश हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो कनीजे हो, लेकिन तारीख में इसलिए जिंदा हैं और इज्जत के साथ जिंदा हैं कि तारीख पे अपना असर डाल के गए, तारीख पे असर डाल के गए हैं ना, तारीख पे असर डाल के। अब इसलिए मैंने इस उनवान का, इस मौजू का इंतखाब किया कि तारीख पे असर डालने वाले अफराद अचानक वजूद में नहीं आते, बल्कि एक तरबियती प्रोसेस है, तरबियत का प्रोसेस है जो उनको वजूद अता करता है। आप कहेंगे कि अंबिया को तरबियत की जरूरत क्या है, अइम्मा ताहिरीन को तरबियत की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं नहीं, वाकई कोई जरूरत नहीं है, लेकिन परवरदिगार ने तरीका यही इख्तियार किया कि बजाहिर तरबियत नजर आए ताकि आपको एक स्कूल ऑफ थॉट मिल जाए कि अगर जनाब इस्माइल इस कुर्बानी के लिए आमादा हुए हैं तो माँ के दूध का भी असर है, बाप की तरबियत का भी असर है। अगर जनाब इस्माइल की वालिदा इतनी बहादुर और दिलेर ना हो कि अपने बच्चे को बेआबो गया और संगलाख पहाड़ों के दरमियान छोड़ने पर, उसके साथ रहने पर आमादा हो जाए, तो जनाब इस्माइल के सामने कुर्बानी की मिसाल कहां से आती? अगर बाप की ये तरबियत ना होती जनाब इस्माइल के लिए कुर्बानियों की, घर का ये माहौल ना होता, तो जनाब इस्माइल अपने आप को ज़िबह करने के लिए या ज़िबह करवाने के लिए तैयार कैसे हो जाते? तो तरबियत तो है ना, नजर आ रही, बेशक मासूम है, बेशक नबी है, लेकिन सुन्नत इलाही ये है कि एक तरबियती कानून से गुजरना पड़ेगा, एक तरबियती कायदा सामने आना चाहिए। मैंने मिसालें दे रहा हूँ ताकि बाद वाली आगे वाली बात करने में मुझे कोई मुश्किल ना हो। मासूम है, इमाम है, लेकिन तरबियती कायदे से गुजारा जाएगा। जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी गोद आगोश, जनाबे सैयदुश शुहदा को ऐसी ही आगोश चाहिए, इमाम हसन मुश्तबा को ऐसी ही आगोश चाहिए, ऐसा ही आंगन चाहिए, ऐसा ही माहौल चाहिए, यही फाखों का माहौल चाहिए, यही दिलेरी और शुजात का माहौल चाहिए, यही मसाइल में घिरे हुए मुसलमान चाहिए। एक प्रोसेस है जिससे गुजरना है। और देखिए तरबियत सामने आ रही है कि नहीं आ रही? मस्जिद में अगर जाएंगे, खुतबा याद करके आएंगे, माँ सुनेगी। अब यहाँ ये कहने का है ना कोई कि भाई ये तो मासूम है, ये तो लोहे महफूज का मुताला करके आए, क्या नहीं? ये तरबियत की स्कूल अगर सामने ना हुआ तो आने वाले अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? लिहाजा हसनैन के बचपन को सलामत रखा, रसूल ने भी उनके बचपने की हिफाजत की, अली ने भी उनके बचपने की हिफाजत की, फातिमा जहरा ने भी उनके बचपने की हिफाजत की। गलियों में खेल कर रसूल ने बताया कि देखो इनका बचपना आम बच्चों जैसा भी है। बेशक इमाम है, बेशक इमाम है, लेकिन खेलना कूदना इनका हक है, नाना दादा की पुश्त पे सवार होना इनका हक है, उनकी जुल्फों से खेलना इनका हक है। बच्चों की तरह आपस में मुसाबिका करना, कभी तहरीर का, कभी और किसी काम में, कहा ये इनका हक है, बच्चों से इनका बचपना न छीनो। तो रसूल ने अमली तौर पे, मौलाए कायनात ने अमली तौर पे बताया कि देखो इमाम है, मासूम है, मंसूस मिनल्ला है, लेकिन बचपना बचपना है। तरबियत के लिए जरूरी है कि पहले बचपन के हुकूक उनको दे दो, जो एक बच्चे का हक है, पैदाइशी हक है बच्चे का, वो मुस्कुराहट भी उसको दो, वो खेल कूद भी उसको दो, वो प्यार भी उसको दो, ताकि वो तुम्हारी बात समझने के काबिल हो सके। तो मासूमीन ने अपने घर के माहौल को कैसा रखा? उन बच्चों को उनका बचपना दिया ताकि तारीख में महफूज रह जाए कि ये बच्चे खेलते भी थे, ये बच्चे मुकाबला भी करते थे, ये बच्चे नाना की शानों पर सवार होकर जुल्फों को लगाम की सूरत में, कि सबकी सवारियों की तो लगाम है, हमारी सवारी की लगाम कहां? तो आपने देखा इस बचपने को महफूज किया। बच्चा आज शहजादा आ रहा है मस्जिद से, पूरा खुतबा याद करके आ रहा है, और वही जो बच्चों का अंदाज है कि माँ को आके बताना कि आज नाना जान ने ये खुतबा दिया, कह सकती है मासूमा कि बेटा तुम तो इमाम हो, तुम तो इल्मे लदुन्नी के हामिल हो, तुम्हें क्या जरूरत। लेकिन नहीं, बचपने की हिफाजत की जा रही है, शौक से माँ अपने बेटे की तकरीर सुन रही है, सुन रही है ना, शौक से अपने बच्चे की तकरीर सुन रही है। और सिर्फ सुना नहीं बल्कि बच्चे के बाबा को भी बताया कि मेरा बेटा मुझे पूरी तकरीर आके सुना देता है। और जब बाबा ने छुप कर सुनना चाही अपने बेटे की तकरीर, तो बच्चे की जबान ने लड़खड़ा कर बता दिया कि बचपना सही, इमाम सही, लेकिन बचपन का तकाजा और सादतमंद औलाद होने का तकाजा यह है कि बड़ों के सामने बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बेटा। इसलिए हम अव्वल से लेकर चल रहे हैं, आपको बिल्कुल इब्तिदा से लेकर चल रहे हैं कि पहले समझ लीजिए कि बचपना है क्या। बचपना हिफाजत करने के लिए, बच्चों को ऐसे उनका बचपना ना छीनो। बच्चे बुकरात नहीं होते, बच्चे सुकरात नहीं होते, बच्चे अफलातून नहीं होते, उनका बचपना महफूज रखो। उनसे तवक्को मत करो कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से वो सोचे भी, तुम्हारी उम्र के हिसाब से वो चले भी, नहीं, ये बच्चे हैं। मासूमीन ने अपने घर में बच्चों को बच्चों की तरह रख के बताया, ये मासूम है, इन्हें किसी की तालीम की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमने ये तरीका ना अपनाया तो तुम्हें वो स्कूल कहां से मिलेगा, वो स्कूल ऑफ थॉट कहां से मिलेगा, तुम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करोगे। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की जबान की लड़खड़ाहट ने बता दिया। अब एक मिनट मुझे दे दीजिए, वाकई की तकरार कर दूं जिन बच्चों ने ना सुना होगा उनके। जाहिर मैंने कल अर्ज कर दिया कि बच्चों और जवानों के लिए मैं ये मजालिस पढ़ रहा हूं, बड़े तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। तो इस वाकये को नकल कर दूं कि जब मौलाए कायनात को ये मालूम हुआ कि मेरा बेटा अपने नाना के अंदाज में पूरी की पूरी तकरीर अपने नाना की सुनाता है, तो छुप गए, पर्दे के पीछे अपने आप को छुपा लिया। दूसरे रोज कि जब मेरा बेटा आएगा तो मैं अपने बेटे की खिताबत सुनूंगा, मैं अपने बेटे की तकरीर सुनूंगा, उसकी हौसला अफजाई करूंगा। शहजादे आए और माँ ने शौक का इजहार किया, शौक जाहिर किया कि बेटा आज मेरे बाबा ने क्या तकरीर की। और शहजादे ने जो ही तकरीर शुरू की अटक गए, जबान में लफ्जिश आ गई, अल्फाज अटकने लगे, रुकने लगे, बोलते हुए झिझकने लगे। एक बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश करने के बाद चारों तरफ निगाहें घुमा के कहते हैं, मुझे लग रहा है ऐ महाद्रे गिरामी मेरा कोई बड़ा मुझे देख रहा है। यह है अदब, यह है तहजीब। यानी पहला मरहला बच्चे का वहां से शुरू होता है कि उसके साथ खेलो भी, उसको खेलने का मौका भी दो, उसका पूरा बचपन उसे दो। पहला दर्स यह है कि उसे बड़ों का अदब और एहतराम सिखाओ। सबसे पहला दर्स कि उसे बड़ों का अदब और एहतराम सिखाओ। अगर तुमने उसे बड़ों का अदब एहतराम न सिखाया, आगे चलकर क्या होगा। मौला मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अस अबू सियासत नकलुल आदत। मुश्किल तरीन सियासत यह है कि किसी की आदत को इंसान बदल दे। यानी आदत का बदलना कितना मुश्किल है, आदतें पुख्ता हो जाएं, आदत मजबूत हो जाएं, तो उनको बदलना कितना मुश्किल काम होता है। इंसान के मिजाज को नहीं बदल सकते। तो कहा ये सबसे मुश्किल सियासत है कि इंसान किसी की आदत को बदले। लिहाजा बचपन से बच्चों को खेलो भी, बच्चों के हुकूक उनको दो, ये खेलना कूदना उनका हक है, ये हंसी उनका हक है। लेकिन इसके साथ साथ पहली तरबियत क्या है कि जब कोई बड़ा घर में दाखिल हो उसे सलाम करना सिखाओ। आप देखते ना भाई आजकल का जो माहौल है कि बच्चों को हमें सलाम करना पड़ता है, सलाम अलैकुम भाई, तो जवाब दे दे तो उसकी मेहरबानी, क्योंकि बच्चे उसका बच्चे का कसूर नहीं बल्कि बड़ों ने उसको ये तमीज सिखाई ही नहीं कि जब किसी बड़े को देखो सलाम करो। चाहे गली में देखो, चाहे सड़क पे देखो, कितना खुश होता है। बड़े सिवाय दुआ के कुछ देते हैं, दुआ ही तो देंगे और तारीफ भी करेंगे, बच्चे की तारीफ थोड़ी करेंगे। बच्चे की तारीफ दर हकीकत वालिदैन की तारीफ होती है। अरे भाई किसका बच्चा है, کتنا مہذب ہے، کتنا احترام کرتا ہے بڑوں کا، کس کا بچہ ہے، فلاں صاحب کا بچہ. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ جب محلے میں نکلا تو یہی بچہ آپ کے لیے عزت کا باعث بھی بن سکتا ہے، یہی بچہ آپ کے لیے ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے. ارے تو اسی لیے تو معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی اولادوں کی طرح ہیں کہ نہیں یہ سارے شیعہ، کہ ہمارے لیے عزت کا باعث بننا، ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بننا. تم جو کام کرو گے لوگ اسی نظر سے دیکھیں گے کہ کس کا ماننے والا ہے. تو یہ بچوں کے لیے کہ پہلے ان کا بچپنا حفظ کرو. لیکن کہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی تربیت؟ تین مرحلے، ایک گھر میں، ایک مدرسے میں، ایک معاشرے میں. گھر میں ان کا پہلا استاد کون ہے؟ ان کی ماں. دوسرے نمبر پہ ان کا باپ، یعنی ماں باپ، مگر پہلے مرحلے میں ان کی ماں. یہ ایک مکتب ہے، پہلا مکتب. اگر یہاں بنیاد کمزور رہ گئی سب جگہ کمزور پڑتی چلی جائے گی، سب جگہ. اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے مومنوں، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے. اے مومنوں بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو. اس آگ سے، وقودہا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. یہ کیا بچانے کو کہا جا رہا ہے؟ صرف اپنا بندوبست نہیں کرنا، اپنے بچوں کو بھی بچانے کا بندوبست کرنا. لہذا پہلا مرحلہ تربیت کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کی آغوش سے. کہا کہ بدبخت ہیں، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بدبخت بھی نہیں بلکہ لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان والدین پر لعنت ہو جو اپنے بچوں کے آنکھ ہونے کا باعث بنتے ہیں. یعنی بچے جن کو آنکھ کر دیا جاتا ہے، کہ ان والدین پر لعنت ہو. بعض وقت تو بچوں کا قصور ہے، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے؟ ان والدین پر لعنت جو باعث بنتے ہیں. یعنی تربیت سے بے توجہ رہتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں، تربیت نہیں کرتے بچوں کی. اب تربیت کیوں کریں صاحب؟ جنتی جو ٹھہرے. جب جنت میں جانا ہے تو تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جنت کے چکر نے کیا کیا؟ ایک پوری نسل کو برباد کرنے کا راستہ کھول دیا. کیونکہ تربیت کا دروازہ تو بند ہو گیا نا. اب تربیت کیسی؟ اب آپ جو بھی کر لیجیے، آپ کو جنت میں جانا ہے. نہ اخلاقیات کی ضرورت، نہ احکام کی ضرورت، نہ بڑوں کا ادب، نہ احترام، نہ مجلس کے آداب، نہ محفل کے آداب. جو چاہیے کر لیجیے، جنت میں چلے جائیے. اب جب بچے نالائق ہو کر سامنے آتے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ہم تو ایسے لوگوں کی بھی جانتے ہیں کہ جب بچوں کو بڑے ہونے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی تو بچہ پھٹ سے کہہ دیتا ہے تم ہی تو کہتے تھے جنت میں جائیں گے سارے، کوئی بھی گناہ کر لو. بھائی آپ ہی تو کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کر لو جنت میں جانا ہے. تو کیسی تربیت، کاہے کی تربیت؟ تو یہ نسلوں کی تباہی کا باعث بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کہ ان والدین بدبخت ہیں، وہ والدین کہ جو غافل رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف سے. کیوں؟ سب سے افضل اور سب سے بڑی معرفت ہی یہ تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے، اپنے بچوں کی نگہبانی کرتے. نہیں، یہ بچپن آپ پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو ادب سکھاؤ، سب سے پہلے وہ مؤدب بن جائیں. اور وہ ادب کیسے سیکھیں گے؟ زبانی نہیں. یہ لیتے جائیے آج کچھ نہ کچھ میرے بچے ساتھ لے کر جائیں گے، ایسے نہیں بھیجوں گا ان کو. زبانی نہیں بلکہ سکھانے والوں کے لیے کہا گیا کہ تمہاری زبان سے زیادہ تمہارا عمل ان کے لیے قابل تقلید ہوگا. اور یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا، تقلید. تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تقلید شروع کر دیتا ہے. یہ جملہ آپ کہیں تک لے جائیے، کوئی اس کی تردید کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے فطرتاً مقلد بن کے پیدا ہوتا ہے. کس کی تقلید کرتا ہے؟ جو اپنے گھر میں دیکھتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا. ماں کی تقلید، باپ کی تقلید، نظریات کی تقلید، مذہب کی تقلید کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے. تو جو ماں باپ کرتے چلے جائیں گے وہ بھی کرتا چلا جائے گا. اور عموماً 90-95% یہی قاعدہ ہے کہ جو ماں باپ کو دیکھتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے. اچھے ماں باپ ہیں بچے بھی اچھے بن جاتے ہیں. ماں باپ کو دوسرے کاموں میں دیکھتا ہے خود بھی ویسا بن جاتا ہے. और आजकल तो कुछ वालदैन खुद ही अपने बच्चों को गलत ट्रैक पे अपने हाथों से डाल देते हैं तबाही के रास्ते में, कि इसमें आमदनी ज्यादा इधर चले जाओ, ये आमदनी ज्यादा। और अब तो कोई शोभा महसूस नहीं रहा, अब तो हर जगह आमदनी देखी जाती है कि कहां आमदनी ज्यादा है। रवि जी के दीन के शोबे को बचा के रख लिया हो, मुमकिन है दीन के शोबे के साथ भी यही हो रहा हो कि भाई आजकल इसमें आमदनी ज्यादा इधर चले जाओ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना, खर्चा कम है, खर्चा कम है, आमदनी ज्यादा है, खर्चा तो है नहीं, जाओ भेज दो मदरसे में, खुद ही खाएगा। माजरत के साथ उलमाए हक और उन तालिब इल्मों की बात नहीं कर रहा, एक फिक्र है उसकी बात कर रहा हूं। एक फिक्र यह भी है कि खर्चा है नहीं, आमदनी जाओ और बड़ी आसान आमदनी है, मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। तो लिहाजा कोई भी शोभा, मैंने किसी को महसूस तो नहीं किया ना, जितने भी शोबे हैं अब उसमें यह देखा जा रहा है, माँ बाप खुद उधर धकेल रहे हैं, तबाही के गार की तरफ धकेल रहे हैं, दीन की तरफ इसलिए नहीं धकेल रहे कि दीन का सिपाही बने, दीन की तरफ इसलिए नहीं भेज रहे कि दीन की तबलीग करे, दीन की तरफ इसलिए नहीं भेज रहे कि मिल्लत मुंतशिर हो चुकी है इसको जमा कर ले, दीन की तरफ इसलिए नहीं भेज रहे कि मुसीबतों और मसाइल का शिकार है कौम, इन मुसीबतों और मसाइल से बाहर निकाल ले, बल्कि दीन की तरफ इसलिए भेज रहे कि ये प्रोफेशन भी अच्छा है, ये प्रोफेशन भी अच्छा है। अच्छा वहां नहीं पढ़ सकते, फेल हो रहे हो, इधर चले जाओ, इस तरफ आ जाओ। तो एक तरबियत का ये भी अंदाज है कि दीन हो मगर दुनिया कमाने का जरिया हो। तो जब दीन दुनिया कमाने का जरिया बन जाए तो आप फिर इस बात की तवक्को नहीं करें कि दीन बचेगा, दीन कहां से बचेगा। अब तो दुकानें खोलने वाली बात है, दुकानें खोल के बैठ जाओ, गलत मसला बताओ सही बताओ, गलत तलाक हो सही तलाक हो, घर उजड़ते उजड़े, आकिबत बर्बाद होती है हो जाए, माल तो आ रहा है ना, तो ये लोग तो फिर आकिबत ही बर्बाद करेंगे ना, अपनी भी दूसरों की भी, दुनिया आखिरत सब बर्बाद करेंगे, क्योंकि दीन तो जानते नहीं, दीन है क्या, ये तो दुकान के तौर पे अपना एक दुकान खोल के बैठ जाओ। तो इसलिए नसीहत कर रहा हूं बच्चों को कि दीन की तरफ जाना है और जरूर जाना है, मगर क्या नियत लेके जाना है कि अपने मकसद की, अपने मजहब की, इन मजलूम लोगों की खिदमत करनी, जो इतने मजलूम हैं कि लुट रहे हैं और इन्हें अपने लुटने की भी खबर नहीं है, लुट रहे हैं और इन्हें यह भी नहीं मालूम कि लुटेरों ने कैसी नकाबें पहन रखी हैं चेहरों के ऊपर। सलवात दे दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का। बारह बात कहीं निकल गई। तो पहला मकतब, पहला मदरसा कौन सा है? मां की आगोश, मां जो सिखाएगी बच्चा तकलीद करता है, मुकल्लिद है। मां ने सिखाया अल्लाह एक, बच्चे ने कहा अल्लाह एक, उसे नहीं पता अल्लाह एक है या नहीं, मेरी मां सिखा रही है। मां ने सिखाया पंजे तन पांच, बच्चे ने कहा पंजे तन पांच। मां ने सिखाया इमाम बारह, बच्चे ने कहा इमाम बारह। मां ने कहा मासूम चौदह, बच्चे ने सीखा मासूम चौदह। मां ने सिखाया करबला के शहीद बहत्तर, बहत्तर शहीद, बच्चे ने कहा करबला के बहत्तर शहीद। और मां ने सिखाया बेटा ये फलाना अदाकार, बच्चे ने कहा फलाना अदाकार। मां ने सिखाया फला अदाकारा, बच्चे ने कहा फला अदाकारा। मां ने सिखाया फला गाना, बच्चे ने गाया फला गाना। मां ने सिखाया नाच, बच्चे ने सीखा नाच। तकलीद है कि नहीं? सुबह शाम कैसे बच्चे हरकतें दिखाते हैं और माँ बाप खुश होते हैं। कोई इसलिए खुश होता है कि उसका बच्चा पंजतन के नाम और बारह इमामों के नाम याद रख रहा है। कोई इसलिए खुश होता है कि उसे हर अदाकार का नाम पता है, हर गुलूकार का नाम पता है, और हर एक का अंदाज भी पता है, हर एक का गाना भी, हर एक का मकालिमा भी है ना। तो पहला मकतब कौन है? तरबियत का, माँ। अगर माँ तरबियत याफ्ता है, अहलियत रखती है, तो बच्चों की तरबियत भी वैसी करेगी कि नहीं तुम्हें खिदमत करनी है, तुम्हें अहले बैत का मोहब्बत करने वाला बनना है, तुम्हें उस सांचे में ढलना है जिसमें अहले बैत चाहते हैं। तो अहले बैत ने तरबियत का मकतब खोला, मदरसा खोला, जानू पे बिठा के मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैं जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नजर आती है जानू पे, खेल भी रहे अपनी बेटी से, नाम ही जैनब रखा है, अपने बाप की जीनत है, अपने बाप की रौनक है, उससे खेल भी रहे, उसे सबक भी पढ़ा रहे। जनाब अब्बास कितने बड़े शागिर्द कह लीजिए, बेटे तो अपनी जगह, जो कुछ सीखा किससे सीखा? बाबा से। तो अली का सिखाना बता रहा है कि मासूम की औलाद होना अपनी जगह, لیکن اگر میں نے یہ اسکول آف تھاٹ تمہیں نہیں دیا, اگر یہ تربیت کا مکتب نہ دیا, تربیت کا مدرسہ نہ دیا, تو تمہیں معلوم کیسے ہوگا کہ بچوں کو بہادر بنایا کیسے جاتا ہے, بچوں کو دلیر بنایا کیسے جاتا ہے, بچوں کو خطرات سے نمٹنے کا عادی کیسے بنایا جاتا ہے کہ تبھی تربیت. اور کبھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات علیہا بچیوں کو ساتھ لے کے جاتی نظر آتی ہیں دربار میں, کیوں؟ تاکہ بچیاں سیکھ لیں حق و باطل کے معرکے میں تقریر کیسے کی جاتی ہے نا. کتاب اپنے مجمع میں بات کرنا اور بات ہے, مخالفین کے مجمع میں ان کے سروں پر پرندے بٹھا دینا کوئی اہل بیت سے سیکھے, موقع تو نہیں نا. تو خطابت یہ ہے, تو بچوں کو یہ سبق لینا ہے کہ خطابت سیکھنی ہے وہ نہیں لوگوں کو خوش کرنے والی, خطابت سیکھنی ہے تو وہ اور اس نیت کے ساتھ سیکھنی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو, جس سے رسول راضی ہو, جس سے میرا مولا راضی ہو جائے, جس سے شہزادی راضی ہو, جس سے بیوی راضی ہو. وہ خطابت کرنی ہے کہ جہاں حق کے لیے زبان چلے بس, حق کے سوا کچھ نہیں. لہذا بچیوں کو کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ تربیت کا حصہ کہ دیکھو کیسے خطاب کیا جاتا ہے باطل کے سامنے, کیسے للکارا جاتا ہے غاصب کو, کیسے تقریر کی جاتی ہے مخالفین کے مجمع میں. نہ صرف یہ کہ سناٹا چھا گیا, اثر کی بات یہ تھی کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, مگر خطاب ایسا تھا شہزادی کا کہ باطل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے یا نہیں, روئے تھے کہ نہیں, دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے کہ نہیں مسجد نبوی کی. اس لیے تربیت ضروری تھی بچوں کی. تو کیسے سکھایا جائے گا؟ زبانی نہیں, عمل کے ذریعے سے بچوں کو سکھاؤ. بکرو کبارکم یوکرکم صغارکم, یہ بھی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے. بکرو بکرو کبارکم, اپنے بڑوں کا احترام کرو. عمل کی بات کرو, زبانی نہیں عمل کی بات کرو. ہم نے کہا نا بچے مقلد ہوتے ہیں, جو آپ کرتے چلے جائیں گے بچے کرتے چلے جائیں گے. اگر کسی کی سمجھ میں تقلید کا مسئلہ نہیں آتا تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ لیں, کتنا غصے ہوتا ہے جب بچے اس کی بات نہیں مانتے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, ہے نا, کتنا غصہ ہو جاتا ہے جب بچے بات نہیں مانتے. میری بات نہیں مانتا کیوں مانے؟ آپ تو خود تقلید کے مخالف ہیں, بچہ بھی نہیں کر رہا, وہ بھی یہی سیکھ رہا ہے کہ تقلید نہیں کرنی. لیکن نہیں, فطرت میں تقلید ہے, یعنی ہر چھوٹے کو بڑے کی تقلید کرنی چاہیے. عقل کہہ رہی ہے, فطرت کہہ رہی ہے, کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں کہ ہر چھوٹے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے کی تقلید کرے. اب جب سنو سال میں یہ تقلید فطرتاً لازم ہے, فطرتاً واجب ہے, تو علمی مقام میں کتنی ضروری ہے کہ ہر چھوٹا ہر کم علم کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ علم والے کی تقلید کرے. دیکھیے عقلی طور پہ بات سامنے آ گئی نا کہ بس کم علم کے لیے کیا ضروری ہوگا, زیادہ علم والے کی, اور زیادہ علم والے کی, اور زیادہ علم والے کی. تو یہ عقلی مسئلہ ہے بھائی, یہ عقل کہتی ہے کہ ہر چھوٹے کو بڑے کی تقلید کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر نظام آگے بڑھ نہیں سکتا, نہ گھر کا, نہ اسکول کا, نہ معاشرے کا. اسکول گھر سے چلا تقلید, اسکول میں گیا تقلید, معاشرے میں آئے گا تو تقلید نہیں, وہاں بھی تقلید, ہر میدان میں تقلید کرنی پڑے گی کہ نہیں. تو سب سے پہلا درس جو بچے نے دے دیا گھر سے کہ تقلید ضروری ہے, اپنے بڑوں سے سیکھے گا جو بڑے کرتے چلے جائیں گے. اب ان سے آگے نکل جائے علم میں وہ اور بات, لیکن جب تک چھوٹا ہے جب تک تو تقلید کرنی ہے نا. وقت کبارکم, اپنے بڑوں کا احترام کرو, اپنے بڑوں کی عزت کرو. کیوں؟ یوقرکم صغارکم, تمہارے چھوٹے تمہارا عزت اور احترام کریں گے, تمہارا عزت احترام کریں گے تمہارے چھوٹے. جب تم کو کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ تم بڑوں کے سامنے کیسے جھکتے ہو, تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تقلید کرتا ہے ماں باپ کی. جب یہ بڑوں کا اتنا احترام کرتے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اس لیے مولا کائنات ارشاد فرمانے کہ زبان سے زیادہ تمہارا عمل بچوں کی تربیت کرتا ہے. جو عمل تم انجام دو گے بچوں کے سامنے جھوٹ بولو گے بچے جھوٹ بولیں گے. پھر ان سے کیسے کہو گے جھوٹ بولنا بری بات, اگر کہہ نہیں سکتا تو سوچے گا تو ضرور عجیب ابا ہے, خود تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں سارا دن, مجھ سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا بیٹا بری بات ہے. لیکن ابا کو بھی بچے کا جھوٹ بولنا اسی وقت برا لگتا ہے جب بچہ ان سے جھوٹ بولے. ساری دنیا سے جھوٹ بولے تو ٹھیک ہے اور خود اس سے جھوٹ بلوائے تب بھی ٹھیک ہے, دکان میں ہو دفتر میں ہو کہیں ہو دن بھر اپنے بچوں سے جھوٹ بلوایا کرتے ہیں. تو بھائی پریکٹس تو آپ خود کرا رہے ہیں بچوں کو جھوٹ بولنے کی, آپ تربیت میں اس کی جھوٹ یعنی تربیت شروع کر رہے ہیں جھوٹ کے ساتھ آپ اس کی. تو جب جھوٹ کے ذریعے سے تربیت شروع کی جائے گی تو اس بچے سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ معاشرے کی. لہٰذا سب سے پہلے عمل کے ذریعے وقت کرو کہ بارک کبارکم, اپنے بڑوں کا احترام کرو, اپنے سے بڑوں کی عزت کرو. یہ بچے کیا کریں گے یوق کرو سیغارکم, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بچے خود بخود تمہارا احترام کریں گے. کیونکہ بچے پاک اور صاف ہوتے ہیں, بچے آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں, بچے سادہ ہوتے ہیں, بچے تسنن و بناوٹ سے عاری ہوتے ہیں. یہ تو جوں جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں زمانہ ان کو خراب کرتا چلا جاتا ہے. زبان کی نیرنگیوں کو جب دیکھتے ہیں اپنے گھر میں اسکول میں معاشرے میں خراب ہوتے جاتے ہیں. ان کے بچپنے کی حفاظت کرو, ان کے بچپن میں ایسی تربیت کرو کہ جب یہ بڑے ہو کر معاشرے کے سامنے جائیں تو تمہارے لیے عزت کا باعث بن جائیں. آپ نے دیکھا نا کہ اچھے بچوں کے لیے صرف اچھے بچوں کی تعریف نہیں ہوتی, ان کے والدین کی بھی تعریف ہوتی کہ نہیں ہوتی. لہذا پہلے گھر سے شروع کرو, ماں کا کام ہے. سب سے اہم ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ذمہ داری. جو ماں کی آغوش میں بچہ سیکھتا ہے مرتے دم تک وہ درس نہیں بھلاتا, اس سبق کو نہیں بھلاتا. ماں کی آغوش میں جو درس لیتا ہے بچہ کبھی اس کو نہیں بھلائے گا. جو ماں سکھا دے گی پکا ہو جائے گا بچہ. اسکول دوسرا مکتب ہے, اور تیسرا تربیت کا مرحلہ ہے رہنماؤں کی طرف سے قوموں کی رہنمائی. اگر رہنما صحیح ہیں قوم کی رہنمائی صحیح کریں گے, اگر رہنما چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں تو آپ کے سامنے کیا حشر ہوتا ہے بڑے بڑے ملکوں کا. آپ کے سامنے ہے نا ایٹمی طاقت, نیوکلیئر پاور, اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک. ان چوروں لٹیروں ڈاکوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ رسوا کر دیا ہمیں, ذلیل کر دیا ہمیں, پوری دنیا کی قوموں کے سامنے تھرڈ کلاس قوم بنا دیا. ہمارا قصور نہیں تھا, ہم تو عزت سے جینا چاہتے ہیں, لیکن رہنماؤں نے کیا کیا ہمیں پوری دنیا میں بالکل ایک تیسرے درجے کی قوم بنا کے شخصی آمریتوں نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے رسوا کر دیا. تو جب قوموں کے رہنما ایسے ہوں جو آپ کے سامنے ہیں تو اتنی بڑی قوم بھی دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہو گئی. اور اب چلا رہے ہیں, آپ دیکھیے فتح تو دیکھیے حق کی, اب چلا رہے ہیں, اب انہیں پتا چل رہا ہے کہ دشمن کون ہے. اب پتا چل رہا, اب تو میری بات آپ, میں بھی 14-15 سال سے آپ کے سامنے یہی سبق پڑھ رہا ہوں, یہی تو بتا رہا ہوں کہ کون اصلی دشمن ہے, کون اصلی شیطان ہے, یہی تو بتا رہا ہوں. اب جب پانی سر سے گزر گیا تو یہ بھی چیخ اٹھے کہ یہ چاہتا ہے, یہ ہمارے ملک میں گھسنا چاہتا ہے, یہ ہم پہ یوں حملہ کرنا چاہتا ہے. تو یہی تو ہم 30 سال سے رو رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطانوں کے خط پہ نہ چلو, شیطانوں کے پیروی نہ کرو, شیطانوں کے راستے پہ نہ چلو. انہ لکم عدوکم مبین, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو جن لوگوں کے رہنما ایسے تھے جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, آج بھی عزت کے ساتھ جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے؟ یہ حق کی فتح. اب کہہ رہے ہو شیطان, اگر اس وقت بات مان لی ہوتی تو یہاں تک نوبت تھوڑی پہنچی ہوتی. یہ ہے قرآن جو ہدایت کر رہا ہے کہ کھلا ہوا شیطان ہے, یہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. اب چیخ رہے ہیں, اب بلبلا رہے ہیں. کیوں؟ اب خطرہ کر پہ آ گیا, گھس گیا اندر خطرہ ان سرحدوں کے تقریباً. اب پتا چل رہا ہے ہم جب شور کر رہے تھے نہیں, اس وقت تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے. لڑوایا بھائیوں کو, بھائیوں سے لڑوایا, خوریزیاں کروائی, انہی خفیہ ہاتھوں نے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, انہی نے دہشت گردوں کو پالا, اسلحہ دیا, لڑنا سکھایا, ان کی برین واشنگ کی, انہیں یہاں تک پہنچایا. آج
रो रहे हो सर पकड़ के, वो तो पागल है ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ रहे, तुम्हें भी मार, उनको तो पता ही नहीं दुनिया उनिया का क्या है, दुनिया किधर है, कैसी दुनिया, वो तो ये समझते मारो, वह मार के जन्नत में जाओ, जिसको भी मारना है वो मारना है कि नहीं। अब समझ में आ रही है बात कि शैतान का क्या हुआ, अगर रहनुमा सही हो तो कौमों की रहनुमाई सही समझ करते हैं, अगर रहनुमा सही हो कौमों को दिलेर बना देते हैं, बहादुर बना देते हैं, सजा बना देते हैं। जब रहनुमा ऐसी तरबियत करते हैं कौम की, तो रहनुमा की जबान में भी एतिमाद पैदा होता है, वो भी ललकारता है शैतानी ताकतों को धड़ल्ले के साथ। क्यों ललकारता है? इसलिए ललकारता है कि मैं अकेला नहीं, पीछे पूरी कौम है। जानता है ना ये कहां से ललकारे, इनके पीछे इनके घर वाले कुर्बानी देने नहीं आते, क्योंकि इन्हें एतिमाद दिया ही कब कौम को, एतिमाद दिया ही नहीं। अगर एतिमाद देते तो कौम निकलती ना, ये खुद अपना एतिबार और एतिमाद खो चुके, क्योंकि बरसों अपनी हुकूमतें बचाने के लिए उस शैतान को इतना रास्ता दे दिया कि वो अमर बेल की तरह इन पर छा गया है, ऑक्टोपस की तरह उसने इनको पकड़ लिया है, हस्तपा की तरह कहीं से निकलने नहीं देता। आपने देखा, अब तो आपके सामने हर बात खुल के अखबारात में मीडिया में आ रही है, अब तो खुद भी कह रहे। जब हम कहते थे तो समझ में नहीं आती थी, हम शुरू से कह रहे हैं कि असल दुश्मन ये है, असल दुश्मन खुला हुआ दुश्मन ये है। तो जब कौमों के रहनुमा तरबियत करने वाले चोर हो तो बेचारी कौम क्या करे, लीडरों को चोरी करते देखती है तो कंपेन भी इसी शर्त पे चलाती है कि पैसा दोगे तो कंपेन चलाएंगे वरना नहीं चलाएंगे, क्योंकि तुम जीत गए या हार गए बाद में कब मिलोगे हमें, जो देना है अभी दे दो। तो कौम के रहनुमाओं पे भरोसा नहीं, रहनुमाओं को कौम पे भरोसा नहीं। आपके सामने है बेएतमादी की फिजा, ये चराग को सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ होगा अगर मैं मजीद इससे भी ज्यादा रोशनी डाल दूं, इतनी काफी है हिलाने के लिए सबको। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो सरकार ये तो तीन मरहले तरबियत के अभी हमने माँ से शुरू किया है, क्योंकि रोजाना इशारे इसलिए दे रहे हैं। और बहरहाल मुझे खुशी है कि बच्चे और जवान जिनके लिए मैंने मौजू शुरू किया है वो अच्छी तादाद मुझे नजर आ रहे हैं, और बुजुर्ग बहरहाल मेरी हौसला अफजाई के लिए आते हैं, वरना वो मुझसे ज्यादा जानते हैं सारे मसाइल को। मगर मैंने यहां से बात को शुरू किया, तीनों मसले बताए, इस पर तफसील से बात करते चले जाएंगे। एक होता है घर, एक होता है मकतब, एक होते हैं कौम माशरा, रहनुमाई करने वाले कौम के रहनुमा। पहले मरहले में माँ बाप रहनुमाई करते हैं, दूसरे मरहले में उस्ताद रहनुमाई करता है उस्ताद, और तीसरे मरहले में रहनुमा, ये कौम के रहनुमा मजहबी हो या सियासी हो कोई फर्क नहीं, अगर सही है, अगर सियासी रहनुमा भी सही हो। थोड़ा सा अपनी फिक्र को रोशन कीजिए, वो जो दिमागों को बंद कर देते हैं ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के जवानों के दिमाग बंद रहे, जरूरी नहीं, मुमकिन है कि मजहबी रहनुमा ना हो मगर मुखलिस तरीन हो अपनी कौम के साथ। ये नेल्सन मैंडेला क्या है, क्या है नेल्सन मैंडेला, कोई मौलवी तो नहीं, कोई रूहानी तो नहीं, लेकिन सिंसियर है, मुखलिस है अपनी कौम के साथ। जब मुखलिस है अपनी कौम की कश्ती को कैसे निकाल के ले गया, अदम तशद्दुद की तहरीक चला के निकाल के ले गया। महाजीर मोहम्मद कोई मौलवी तो नहीं, लेकिन किस तरह उसने साम्राज्य के मुआशी हथकंडों को दुनिया के सामने जाहिर किया। ये माओ हो खैरब हो, हमें कम्युनिज्म से दिलचस्पी नहीं, लेकिन उस जमाने में जिस जमाने में ये तहरीकें चली, तो चेयरमैन माओ अपनी कौम का नजात दहिंदा बना कि नहीं बना, क्योंकि सिंसियर है, मुखलिस है कौम के साथ। तो पहली शर्त क्या होती है, मुखलिस, अगर रहनुमा मुखलिस हो, चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी, अगर मुखलिस होगा अपनी कौम की कश्ती को मझधार से निकाल के ले जाएगा, मुखलिस नहीं होगा तबाह कर देगा कौम को भी खुद भी तबाह हो जाएगा। और तरस रहे होंगे लोग कि कोई तो होता जो रास्ता बताता, कोई तो होता जो बोल ही देता, अब तो बोलने में भी पता नहीं क्या मौत आती है लोगों को। ऐसे ऐसे भी सियासी रहनुमा हमारे यहाँ बैठे हुए कि जो बोलते भी नहीं मसाइल पे, इतना सारे वाकयात को बोलने की भी ज़हमत नहीं करते वो। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो कौमों की तरबियत, ये क्यों कह रहा हूं आपके सामने बातें कर रहा हूं कि जितनी मेरी आवाज है उतनी ही बात तो कर सकता हूं ना, यहां तक मेरी आवाज जा सकती, यहां तक बात कर रहा हूं। और इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये आने वाले बच्चे जो हमारा कल हैं, ये जो यहां बैठे हैं, अल्लाह इनकी आवाज में इतनी ताकत दे देगा, मुझे यकीन है कि जो ख्वाब हम देख रहे हैं ये उसकी ताबीर बन जाएंगे। याद रखिए, ये बच्चे और जवान जब नारे लगाते हैं मुझे बड़ा हौसला मिलता है। इस तकरीर पे खास तौर पे जो तकरीर मैं कर रहा हूं, जिस तरह की कि कुछ लोगों को अब भी मैं देख रहा हूं कि सो रहे हैं, मगर मुझे कोई शिकायत उनसे नहीं होती, बेशक सो जाए, अच्छी नींद कर ली। सलवात भेजिए एक बार और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हमारा कल, ये बच्चे, देखिए कौमों की जंगें चंद दिनों की, चंद महीनों की, चंद सालों की नहीं होती, बाद औकात तो ये लड़ाइयां सदियों तक चलती, सदियों तक। तो जल्दबाजी कैसी, जल्दी किस बात की, जो हो चुका हो गया ना, हो रहा है देख रहे हैं, देख लेंगे भाई। आगे के लिए तो बीज बोते जाओ ना, बीज बोते जाओ, खुद गरज ना बनो कि जो मिलना है अपनी जिंदगी में मिल जाए। अगर अपनी जिंदगी में ही मनसब नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ तहरीक चलाने का? नहीं, ये इस्लामी तरबियत का तगादा ये नहीं। इस्लामी तरबियत कहती है कि आदम वाला काम करो, आदम के पौधे को पानी दिया नूह ने, जनाबे नूह के पौधे को पानी दिया जनाबे इब्राहिम ने, तेरी की आगे चलती रही ना, सब अपने अपने हिस्से का काम करते रहे और यहां तक के गुलशन तैयार हुआ। और जिसके लिए तैयारी की थी, हजारों साल तक अंबिया ने तहरीकें चलाई, मैदान हमार किया किसके लिए, कि वो इंसानियत का नजात दहिंदा आ जाए जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है बस, अब हमें भी मूवमेंट चलानी है, हमें भी तहरीक चलानी है, जगह जगह बीज बोने हैं, अपनी जिंदगी का मसला नहीं, बीज बो जाओ। जो खुदा की राह में बीज बोकर जाएगा, जो दीन के लिए काम करके जाएगा, तो सुन्नत इलाही ये है कि सदियां गुजर जाएं, हजारों साल गुजर जाएं, कभी परवरदिगार आलम उनके काम को जाया नहीं करता, कभी जाया नहीं करता। बीज बोते जाओ, हमारी जिंदगी बना सही, आने वाले और आगे बढ़ाएंगे, उनके बाद वाले और आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमें भी तो गुलशन तैयार करना है, हमें भी तो किसी आने वाले के लिए जमीन हमवार करनी है, हमें भी तो किसी मोहम्मद के लिए लश्कर बना के देना है या नहीं? समझ में आ गए? अब कोई नबी तो नहीं आएगा, कोई पैगंबर तो नहीं आएगा, मगर एक आने वाला मोहम्मद आएगा ना। कोई पैगंबर रसूल तो नहीं आएगा, लेकिन एक मोहम्मद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर हमारा काम क्या? बड़े हौसले से, बड़े सुकून से, बड़े अज़्म के साथ ये सोचकर कि किया हुआ काम कभी जाया नहीं जाता, अल्लाह की राह में बढ़ाया हुआ एक कदम भी आगे ही होता है, पीछे नहीं आता। घबराओ मत, हौसला मत हारो, काम करते चले जाओ, बीज बोते चले जाओ। और मेरे मौला का भी कौल है कि कदम कदम पर बीज बोते जाओ, एक दिन पूरा बाग लगा हुआ पाओगे, पूरा बाग लगा। तो अब जरूरत है इस बात, अल्लाह अब जरूरत है इस बात, अब ऐसे काम किया, अपने बच्चों को जाया ना किया जाए। हमें तो कश्मकशे मर के बे अमा ही मिली, इन्हें तो जीती हयात मिल जाए, कोई तो इन्हें जिंदगी का रास्ता बताए ना कि जिंदगी है क्या, कैसे चलना है। तकदीर बदलने वाले हो तुम, तारीख का रुख मोड़ने वाले हो, इंसानी आज़्म तकदीर के लिखे हुए को बदल देता है। याद रखा ये उसूल है, इंसानी आज़्म मुकद्दर को बदल देता है, यह इंसानियत। तो ऐसा बनना है, अल्लाह ने बेकार पैदा किया है तुम्हें, जलील और रुस्वा होने के लिए पैदा किया है दुनिया की कौमों में, दुनिया के सामने बेबस लोगों की तरह जीने के लिए पैदा किया है, या नहीं? हर इंसान अगर अपनी जगह ये सोचे, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, आखिर वो दस्तक देने वाला मैं क्यों नहीं बनूं, इंतजार क्यों किया जाए, मैं खुद क्यों नहीं हो सकता। सैल के उतरने का इंतजार सबको है, सैल के उतरने का इंतजार सबको है, बंद सैल के आगे बांधता नहीं कोई। बंद बांधने वाले बनो। कल हवाओं को हमने अहमियत नहीं दी थी, अब के बार आंधी में घर बचा नहीं कोई। बस जमाना कुछ कह रहा है, इंतजार ना करो कि सैल उतरे, तूफान टल जाए तो कुछ करेंगे, नहीं, इस तूफान को रोकने वाले बन जाओ, इस सैल के सामने बंद बांधने वाले बनो। क्यों नहीं तुम, क्यों नहीं? अल्लाह ने तुम्हें कोई और दिमाग दिया है, दूसरों को कोई और दिमाग दिया है, तुम्हें कोई और जिस्म दिया है, किसी को कोई और जिस्म दिया है? तखरीब के दामन से तामीर निकलती है। जितनी खराबियां हैं ये बता रही हैं कि इन्हीं खराब कारियों से, इन्हीं खंडरात से तामीर होगी। वो तामीर करने वाले आप और मैं क्यों नहीं, कोई और क्यों? आप क्यों नहीं हो, ये बच्चे क्यों नहीं हो? तो सोचो तो सही, अपनी हैसियत तो पहचानो। और यहां पर भी, इस बात के लिए भी मेरा मौला मौला मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मैं इसके बाद मंजिल पर आता हूं, हलक अमरू मन लम यारिफ कद्रहू, वो शख्स हलाक हो गया, मर गया, जिसने अपनी कदर व कीमत ही ना पहचानी। अब कहां है आप? मामूली लोग हैं, आप भी मामूली इंसान हैं, कैसे समझ लिया आप? किसने कहा है आपको क्या आप बहुत मामूली हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं? हला कमरो, वो शख्स हलाक हो गया, चाहे वो शख्स हो चाहे वो कौम हो, हलाक हो गया। मतलब यार कदर, जिसने अपनी कदर व कीमत ही नहीं पहचानी। आपको मालूम है आपकी कदर व कीमत क्या है? बाबा आप ही हो सकते हैं ना तकदीरें बदलने वाले। लिहाजा अपने आप को पहचानो। अफजलुल मारिफत मारिफतुल इंसान नफ्स हो, सबसे बड़ी मारिफत ही अपने आप को पहचानना है। यह भी मौला का कौल है नाजुल बलागा, सबसे बड़ी मारिफत, सबसे बड़ी शनाख्त अपने आप को पहचानना है। मारिफतुल इंसान नफ्स हो, अपने नफ्स को पहचानना। मुकम्मल कर दूं बात, वो कौल मौला का जो आप और पैगंबर की हदीस भी है जो सुनते चले आ रहे हैं, मन अरफा नफ्सा अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। यानी ये इंसान इतना अजीम है कि अगर ये अपने आप को पहचान ले तो ऐसा है कि जैसे इसने अपने रब को पहचान लिया। मुतकबिर ना बन जाए। बात को जहां छोड़ रहे हैं, कल यहां से आगाज करेंगे, अब यहां पे हमने बात को खत्म किया कि सबसे पहली बात अपने आप को पहचानना तो सही, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, दूसरा क्यों, हम में ही वो तकदीर बदलने वाला क्यों ना हो इस मुल्क की, इस कौम की, इन लोगों की जिन्हें 60 साल से मुसलसल लूट रहे हैं मुख्तलिफ लिबादों में लोग आके, क्यों नहीं हम, क्यों नहीं? लिहाजा हालात का भी तकाजा है, कौमी तकाजा भी है, मुल्की तकाजा भी है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। हमें हुक्मरानों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी, कोई ललकारने की कुव्वत रखता हो या नहीं रखता हो, हमें ललकारना आता है, हम बताएंगे कि कैसे ललकार। बात इन ताकतों को वक्त तो आने दीजिए, अभी वक्त आने दीजिए। वो अपने हिसाब किताब करते हैं, कुदरत अपने हिसाब किताब चलाती है, करने दीजिए। पहले भी उनके कैलकुलेशन गलत हो गए, बड़े हिसाब किताब से आए थे हमला करने के लिए लुबनान पे। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करेंगे बात, जिंदगी रही करेंगे अभी 8 दिन, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये ऐसा मौजू है, आता है तो बस पता नहीं क्या क्या मेरे दिलो दिमाग में आ जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस वक्त अपने आप को कंट्रोल किया है कि नहीं भाई कुछ कल के लिए, अगर जिंदगी रही तो बचा के रखो। एक इशारा तो दे दिया मैंने, इशारा तो दे दिया कि वो अपना हिसाब किताब करते हैं, कुदरत अपना हिसाब किताब करते हैं, यजीद अपना हिसाब किताब कर रहा है, और ठीक है अपनी जगह, अपनी जगह ठीक है। क्यों? उस वक्त का मीडिया उसके साथ है, प्रोपेगेंडा टीमें उसके साथ हैं, तबलीगात करने वाले लोग, झूठी सच्ची बातें फैलाने वाले लोग उसके साथ हैं, पूरा मुआशरा उसके कंट्रोल में है, हर इस्लामी शहर में लोग फैले हुए हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जैसा नतीजा वो चाहता है वैसा मिल रहा है। यानी लोगों ने साथ देने से इनकार कर दिया, नवासे रसूल का साथ देने से इनकार कर दिया, हर चीज उसके हिसाब किताब के मुताबिक चल रही है, चल रही है ना, जो प्लानिंग की है उसने उस प्लानिंग के तहत चल रहा है। भाई वो अपनी प्लानिंग कर रहा है ना, करने दीजिए, की उसने प्लानिंग और उसमें कामयाब रहा, आखिर तक कामयाब रहा, वाकई करबला के बाद तक वो ये समझता रहा कि मैं कामयाब, वो अपनी प्लानिंग कर रहा था, और इसकी प्लानिंग को देखते हुए नवासे रसूल अपनी प्लानिंग कर रहे थे, इसकी मंसूबाबंदी को देखते हुए फर्जंद जहरा अपनी मंसूबाबंदी कर रहे थे, अपना प्लान बना रहे थे। अब ये तो हुसैन जानते हैं कि इसकी मंसूबाबंदी है शख्सी हुकूमत के लिए, इसकी मंसूबाबंदी है सिर्फ अपने तख्त को बचाने के लिए, और मेरी मंसूबाबंदी है कयामत तक के लिए दीन बचाने के लिए, इसकी मंसूबाबंदी है चंद दिनों की हुकूमत के लिए, मेरी प्लानिंग है कयामत तक दीन बच जाए। तो अब बताइए किसकी प्लानिंग कामयाब हुई, कौन जीता? अगर कयामत तक दीन बचा है तो हुसैन की मंसूबाबंदी कामयाब, अगर दीन मिट जाए तो वो कामयाब, तो वो अपनी मंसूबाबंदी में बजाहिर कामयाब रहा। लेकिन हुसैन की मंसूबाबंदी कैसी थी कि यजीद यही समझता रहे कि मैं हुसैन को घेर रहा हूं, उसे ये पता ही नहीं चला कि किस तरह से हुसैन ने उसे कर्बला में घेरा है। कि किसने घेरा है, उसने हुसैन को घेरा या हुसैन ने उसे घेरा? जब कयामत तक भागने की कोशिश करेगा करबला से, करबला भागने नहीं देती यजीद को। तो आपने देखा, तो ये मंसूबाबंदी है जो इलाही मंसूबाबंदी है, जो चंद दिनों के लिए नहीं होती। बस जब ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तब हुसैन चले मदीने से, और किस अंदाज में चले हैं मदीने से, भरा पूरा घर। मालूम है कि कहां जा रहा हूं, मालूम है कि क्यों जा रहा हूं, और यह भी मालूम है कि क्या होने वाला है। उसके बावजूद हुसैन औरतों को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको लेकर गए। क्यों? यहां भी पैगाम है, करबला में एक मदरसा तरबियत का खोलने के लिए, बताने के लिए कि अगर ये बच्चे ना हुए, ये खवातीन ना हुई, तो मेरी तरबियत का ये रुख सामने कैसे आएगा? जो तरबियत मैंने की है अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की, वो तरबियत का रुख कैसे सामने आएगा? लिहाजा इन सब को लेकर हुसैन चले मदीने से। और अजीब अंदाज है, बस अब मसाइब की मंजिल आ गई, अब एक दो जुमले कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा कि बीवियों के जज्बात का क्या आलम होगा जब मदीने से चलने की तैयारी हो रही होगी। रोज़े रसूल से कैसे रुखसत हुई होंगी बीबियां, और खास तौर पे सानिये जहरा अपनी मां की कब्र से कैसे रुखसत हुई होंगी, और जबकि ये जानते हैं हरम कि जब वापस आएंगे तो हमारा कोई भी जवान हमारे साथ ना होगा, सबको इल्म है। ये जितने जवान हमारे साथ जा रहे हैं इनमें से एक भी वापस आने वाला नहीं है, इस आलम में जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मदीना है ना, मदीना एहतिमाम कर दिया गया, मदीने में पूरा एहतिमाम है पर्दे का, गलियों में कनातें लगा दी गई। मेरी माएं बहनें और बेटियां सुन रही हैं ना, मेरी बच्चियां सुन रही हैं, ये सैदानियां सुन रही हैं, सैयदानियां सुन रही हैं, अपनी सियादत की हिफाजत करो, अल्लाह ने तुम्हें ये मनसब दिया है सैयदजादी होने का, मोमिना होने का, बस इतना इशारा काफी है अपनी माओं बहनों बेटियों और बच्चियों के लिए। कनाते तान दी गई, कनाते लगा दी, और हर महरम आकर अपनी मां को, बहन, या बीवी को सवार करा रहा। और जब सानिया जहरा के सवार होने का वक्त आया, सब हाशमी जवान, जैनब के सब भाई, सब बस्ता खड़े, बेटे भतीजे, आसिम अली अकबर जैसे बेटे भतीजे जिन्हें पाला है जैनब, सब तैयार हैं जब जैनब के सवार होने की बारी। और मंजर कशी जो उलमा ने की है, मुझे उस मंजर को बयान करने का एक अजीब ही कहना चाहिए कि मैं अजीब ही कैफ महसूस करता हूँ मोहब्बत का, भाई और बहन की। इस अंदाज, तो ये अंदाज था जनाब अब्बास का कि जब सानिया जहरा नाके के करीब आ गई, पालान पे सवार भी तो होना है ना, पालान पे सवार भी होना है, तो अब्बास ने अपने हाथों की सीढ़ी बनाई। ये जो अपने आप को गुलाम कहता है औलाद जहरा का अब्बास, इसने अपने हाथों की सीढ़ी बना के सानिया जहरा को सवार किया। आलम यह है जनाब अब्बास का कि काफिला जब चला है मदीने से, तो हर तरफ अब्बास ही अब्बास नजर आते हैं। क्यों? चारों तरफ पहरा जो दे रहे हैं, दौड़ दौड़ कर सवार हैं अपने घोड़े पर और चारों तरफ चक्कर लगा। और कितने नाज से देखती होगी बहन अपने इस भाई। ये काफिला करबला पहुंचा, अभी मालूम नहीं कि ये करबला है, हुसैन जानते हैं कि ये ही करबला है, लेकिन अभी बताया नहीं किसी को कि ये करबला है। सवारियां रुक गई, हुसैन के घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, हुसैन ने अपनी सवारी बदल ली, वो भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरी, चौथी, पांचवी, सात सवारियां बदली, मगर कोई सवारी आगे नहीं बढ़ी। जनाब सीदी शोदा ने पूछा, ये जमीन किसकी है? बताया गया बनी असद की। पहला ये उसूल देखा आपने, आज तक हुसैन की जमीन है करबला, हुसैन ने दूसरे की जमीन पे जंग नहीं की। बुलाओ बनी असद के लोगों को, पूरा कबीला जमा हो गया, मर्द औरतें बच्चे के फर्जंदे रसूल तशरीफ लाए हैं, पूरा कबीला खुशियां मनाता हुआ जमा हो गया इस्तकबाल के लिए फर्जंदे रसूल आए। लेकिन आने के बाद कहते हैं कि फर्जंदे रसूल, जितनी जल्द हो सके आप इस जमीन को छोड़ दीजिए, यहां से चले जाइए। पूछा हुसैन ने, क्या नाम है इस जमीन का? किसी ने आगे बढ़कर बनाया बताया, असल नाम नहीं बताते, जो नाम मतरूक हो चुके हैं, जो नाम पुराने हैं वो बताते हैं कि फर्जंदे रसूल, इसे नैनवा कहते हैं, और कोई नाम है फिर असल नाम छुपाते हैं, मारिया, शत्ते फराक और पता नहीं क्या क्या। और हुसैन है कि पूछते जा रहे हैं और कोई भी नाम, और कोई भी नाम। आखिर मुतअद्दिद नाम बताने के बाद किसी ने कहा कि फर्जंदे रसूल, इसे करबला भी कहते हैं। ये करबला भी, बस ये नाम सुना, आप अपनी सवारी से उतरे, ये जुमला कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस हमारी मंजिल आ गई, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। खुदा की कसम, मुझे इसी जमीन की खबर दी गई है, यही हमारे खेमे नस्ब होंगे, यही हमारी सवारियों की जगह है, यही हम कत्ल किए जाएंगे, यही हमारे मजार बनेंगे, और यही से हम कयामत के दिन उठा लिए जाएंगे। अब ये गुफ्तगु फरमा ही रहे थे कि फिजा दौड़ी दौड़ी पहुंची, माजा शहजादे सानिया जहरा ने तलब किया, सलाम भेजा है सानिया जहरा, आए हुसैन महमिल के पास, सवारी के पास, नाके के पास, बहन तड़प कर करिए भाई, जितना जल्दी हो सके ये जमीन छोड़ दीजिए, जब से यहां सवारी है काफिला रुका है मेरा दिल काबू में नहीं है, ए भाई मुझे इस हवा से, इस मट्टी से, इस फिजा से तेरे खून की बू आ रही। सर झुका लिया हुसैन ने, सर झुका के कहा, जैनब अब हम कहीं जाने वाले हैं, यही मंजिल, जैनब यही मंजिल है, यही वादागार, इसी जगह का हमसे वादा किया गया है, वापस पलट। बनी असद के लोग जमा हैं, उनसे कहा कि इस जमीन का सौदा करो, मुझे इस जमीन को बेच दो। वो कहते हैं फरजंदे रसूल हम आपको यूं ही हिबा कर, हम ये जमीन वैसे ही देते हैं। कहा कि नहीं, मैं खरीदना चाहता, मैं जमीन तुमसे लेना चाहता। कीमत तय हुई और जो रोज की कीमत, यानी उस दौर की जो मारूफ कीमत थी, 60,000 दिरहम में वो जमीन हुसैन ने खरीदी, पैसे दे दिए, जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ये जमीन तुम्हें हिबा करता हूं, हिबा करता हूं तीन शर्तों के साथ, मेरी तीन बातें मानना और ये जमीन तुम्हारी है। जब तक मैं रह रहा हूं मेरी, उसके बाद ये तुम्हारी है, मगर तीन बात। फरजंद रसूल इरशाद फरमाई, देखो हम कुछ दिनों की बात है, हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे, हम कत्ल कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे चाहने वाले आएंगे, हमारी कब्रें बनेंगी। तीन बातें हमारी मान लें, इस पे अमल करना हमेशा, और अपने आने वाली नस्लों को भी नसीहतें वसीयतें करते जाना, वसीयतें करके जाना हमारी इन तीन बातों के मामले। देखो, एक पहली बात तो ये कि जमीन पे कभी खेती बाड़ी ना करना, आज तक खेती बाड़ी नहीं, हुसैन की जमीन है ना अपनी। अगर दूसरे की जमीन पे जंग होती तो कोई भी बात में अपना हक जताता, हुसैन की जमीन है, मेरी जमीन, इस पे खेती बाड़ी ना करना, जरात ना करना इस पे। और दूसरी बात यह है कि बहुत अरसे के बाद हमारे चाहने वाले हमारी कब्रों की जियारत के लिए आएंगे, हमारी कब्रों की निशानदेही करना, उन्हें हमारी कब्रों के निशान बताना, तीन दिन तक उन्हें मेहमान रखना। यूं ही तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते ना, हम आज रो रहे हैं हुसैन को, हम आज मातम कर रहे हैं फरजंद ज़हरा का। हुसैन ने हमें वहां करबला में जमीन खरीदते वक्त याद किया, मोहब्बत एक तरफा तो नहीं है ना, पहले हुसैन ने याद किया, मेरे चाहने वाले आएंगे, इन्हें तीन दिन तक मेहमान रखना, हमारी कब्रों के निशान बताना। सर झुकाए खड़े हैं बनी असद के लोग, मौला करेंगे। और तीसरी शर्त सुनो, ये कूफी और शानी का लश्कर जिसने हमारा रास्ता रोका है, 10 मुहर्रम को हमें कत्ल करने के बाद अपने लाशें दफनाएगा, हमारे लाशों को बेगोर और कफन छोड़कर चला जाएगा। देखो, जब ये लश्कर चला जाए, हमारे लाशों को दफना देना, हमारे लाशों को दफना देना। तसल्ली नहीं हुई हुसैन की, अपनी खवातीन को बुलाओ, खवातीन जमा हुई। हुसैन उन खवातीन से कहते हैं कि अगर इब्ने ज़ियाद के डर से तुम्हारे मर्द हमारी कब्रें ना बनाए तो तुम पर लाजिम है कि चादरें पहन करना, तुम पर लाजिम है कि मेरी वसीयत पर अमल करना और हमारे लाशों को दफना देना। फिर भी तसल्ली ना हुई हुसैन की, बच्चों को बुला लिया, छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया, छोटे हैं ना बच्चे, तो हुसैन उनके सामने इतना झुके कि बच्चों के बराबर आ जाए। और फिर उसके बाद कहते हैं बहुत प्यार से इन बच्चों से, देखो बच्चों, अगर हाकिम के खौफ से ये तुम्हारे बड़े हमारे लाशों को ना दफनाए तो तुम तो छोटे हो ना, तुम तो बच्चे हो, खेलते खेलते आना, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मट्टी उठाना, हमारे लाशों पर डाल दे। मर्दों ने भी वादा किया, औरतों ने भी वादा किया, इन मासूम बच्चों ने भी वादा किया, मौला हम आपसे किए हुए वादे पूरा करेंगे। लेकिन क्या हुआ अजीजो, क्या हुआ जानते हैं? 10 मुहर्रम के बाद अपने कुश्तों को दफना के उमर साद का लश्कर चला गया। कई रोज गुजर गए, 2-3 रोज गुजर गए, क्योंकि ये तो तय है कि 12 मुहर्रम को जब असीरों का काफिला गुजरा है तो उस वक्त तक लाशें दफनाए न गए, मुझे नहीं मालूम। हाँ, इतने दिन गुजर गए कि अब सन्नाटा है मैदान करबला में, उमर साद का लश्कर जा चुका, बस शोहदा के लाशें हैं जो गंजे शहीदा में जा बजा बिखरे हुए, जा बजा बिखरे हुए शोहदा के लाशें। और ये जंग देखी है ना बनी हसन के लोगों ने, दहशत खौफ के आलम में, शहर में जब कोई खौफनाक सानिया हो जाए लोगों की हालत क्या हो जाती। तो बनी हसन के लोगों ने ऐसा मारका देखा है आसमान के दिन का, सहम के बैठे हुए घरों से नहीं निकलते। जब कई रोज गुजर गए, बीबियां जमा हुई, खवातीन जमा हुई, अरे अब तो जंग खत्म हो गई, अब ये कूफी और शामी चले गए, अरे हमने वादा किया है हुसैन से, हमारे मर्दों ने वादा किया है हुसैन से, अरे देखो फर्जंद रसूल का लाशा बेगोरों कफन पड़ा है। अपने मर्दों को जमा किया, उनको गैरत दिलाई, उनकी गैरत जगाई, अरे हुसैन से वादा किया था, वो देखो बेगोरों कफन लाशा पड़ा है जहरा के लाल का, चलो आगे बढ़ो, इस लाशे को दफनाओ। मर्दों ने घरों में बिठा दिया, खवातीन को खबरदार, अरे अभी देखा नहीं क्या हुआ, क्या चाहती हो बेवा बना दी जाओ, क्या चाहती हो तुम्हारे बच्चे कत्ल कर दिए जाएं, ये जमाना नहीं घर से बाहर निकलने का। मायूस हो गई खवातीन, क्या करें। फिर वसीयत याद आई कि अगर मर्द तैयार ना हो तो तुम निकलना, सरों पे चादरें डाली, बच्चों को जमा किया, और बच्चों को जमा करके कहती है कि तुमने भी तो वादा किया है, तुमसे भी तो बैत ली है हुसैन ने, तुमसे भी तो बैत ली है हुसैन ने, चलो हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो, जहरा के लाल का लाशा दफनाना है। छोटे छोटे बच्चों ने कुदाल बेल से हाथों में लिए, अपनी माओ के साथ जब कबीले से निकले, मर्दों की गैरतें जाग उठी, कह रहे अगर हमारी औरतें मैदान में जाकर लाशें दफनाएंगी तो इससे बड़ी कोई मौत नहीं हो सकती, ये तलवार की मौत से भी ज्यादा जिल्लत की मौत है। दौड़े, अपने हथियार सजा के, अपनी औरतों के हाथ पकड़ के घरों में बिठाया कि ये नहीं हो सकता कि हमारी जिंदगी में तुम घरों से निकल जाओ और मैदान में जाकर लाशें दफनाओ, दुनिया क्या कहेगी, हमारी गैरतों को गवारा नहीं। हाय सैयद सज्जाद, हाय मेरा बीमार इमाम, हाय हुसैन का बेटा, अरे किस तरह से गुजर रहा था, गले में सौगे खानदार, हाथ पैरों में जंजीरें, हथकड़ियां भेड़िया, बाप का बेगौर और कफन लाशा पड़ा है, आखिरी दम तक सैयद सज्जाद को ये दुख रहा है, मौत बेटे पर, मौत बेटे पर, उस जवान बेटे पर जिसका अब्बा जिसके बूढ़े बाप का लाशा बेगौर और कफन पड़ा हो और उसे अपने बाबा के लाशे को दफनाने की। Thank you.